पिछले अध्याय में आपने देखा कि रात 11 बजे रुद्र के विला में रूही थक कर सो गई थी, लेकिन रुद्र उसे प्यार करता रहा। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद वो रूही के बगल में लेट गया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, रू, तुम सिर्फ मेरी हो। फिर वो रूही को बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह रोहित के विला में परी की आंखें खुली और वो रोहित को अपने बिस्तर पर देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि ये सपना है, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे गुस्सा आ गया। उसने रोहित पर तकिया फेंका और चिल्लाने लगी, बेशर्म इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बिस्तर पर सोने की? उसने रोहित का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसे पकड़ लिया और कहा, परी, मुझे लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। परी ने फिर से रोहित को बेशर्म कहा, जिस पर रोहित जोर से हंस पड़ा। अब आगे, चैप्टर 270। अब आगे, अगली सुबह, रोहित का विला, रोहित का रूम। परी जैसे ही रोहित को देख गुस्से में ये बोलती है कि वो उसके घर में, उसके कमरे में, उसके बेड पर क्या कर रहा है और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। उसके पास सोने की इस बात को सुनकर रोहित की एक तेज हंसी इस रूम में गूंज उठती है और वे जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख परी के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ हैरानी भी साफ नजर आ रही थी कि ये पागल इंसान हंस क्यों रहा। वहीं परी के गुस्से और हैरानी के भरे चेहरे को देखते हुए रोहित अपनी हंसी रोक उसके ऊपर के हट उसे अपने रूम की तरफ इशारा करके बोला, नाजुक की परी, इस रूम को ध्यान से देखो। ये रूम भी मेरा है, ये विला भी मेरा है और ये बेड भी मेरा है। इतना बोल वे झुककर परी के गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, और नाजुक सी परी, इस वक्त तुम मेरे बेड पर मेरे साथ सोई हुई हो। इतना बोल रोहित मुस्कुराने लगता है। वहीं परी जैसे ही रोहित की बात सुनती है, वैसे ही रोहित का हाथ अपने चेहरे से झटक बेड से उतर जाती है और फिर उस रूम को देखने लगती है जो सच में उसका नहीं था। ये देख वे सोच ही रही थी कि अगर ये रूम उसका नहीं है तो किसका है। तभी उसके दिमाग में कल की बातें घूमने लगती है कि किस तरह वे कॉलेज में थी और किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था। ये बात जैसे ही परी के दिमाग में आती है, वे अपनी गुस्से की भरी नजरों से रोहित को देखने लगती है। वहीं रोहित परी को गुस्से में देख अभी कुछ समझ पाता, उसके पहले ही परी दोबारा से रोहित के करीब आ उसके कॉलर को पकड़ गुस्से में बोली, तुम बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किडनैप करने की और किडनैप कर यहाँ लाने की? बोलो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते थे, बोलो। परी की बात सुनकर पहले तो रोहित हैरान था, लेकिन फिर परी की कमर को पकड़कर उसे खुद के करीब करते हुए एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, नाजुक सी परी, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की जब अकेले कमरे में होते हैं तो वे क्या करना चाहते हैं? अब क्या ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? अब तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा ही दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर लूं? इतना बोल वे परी के ऊपर झुकने लगता है। वहीं परी जैसे ही रोहित की हरकत देखती है तो उसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो, मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना। इतना बोल वे जाने लगती है, जिसे देख रोहित परी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, अरे नाजुक की परी रुको, पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूँ, वरना आंटी बोलेंगी कि मैंने उनकी बेटी का ध्यान भी नहीं रखता। रोहित की बात सुनकर परी रुककर हैरानी से रोहित को देखते हुए बोली, इसका मतलब तुमने मॉम को भी कॉल करके बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? परी की बात सुनकर रोहित बस मुस्कुरा देता है। वहीं परी भी अब आगे कुछ न बोलते हुए सीधा बाथरूम में घुस जाती है, क्योंकि उसे अभी फ्रेश होने की काफी जरूरत महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र का विला, रुद्र का रूम।
रूही की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुलती हैं तो देखती है कि वे बेड पर अकेली ही सो रही थी, जिसे देख वे बेड से उठने लगती है। मगर वे जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करती है, वैसे ही दर्द की वजह से उसकी एक हल्की सी चीख निकल जाती है।